الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم سورہ کہف شروع کرتے ہیں. یہ آرڈر کے اعتبار سے 18th سورت ہے قرآن پاک کی، 18th نمبر پہ، اور نزول کے اعتبار سے 69th سورت بنتی ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 69th نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی. اس کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. اور اسے کہف، سورہ کہف کو کہف کا لفظ کہنے استعمال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اور کیف جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. اور اس صورت میں ان غار والوں کا قصہ آئے گا آگے چل کے، ہم دیکھیں گے آیت نمبر 9 سے آن ورڈز، تو 26 آیت تک تقریباً. تو اسی حوالے سے انہیں خاص طور سے سورہ کہف کا نام دیا ہے. اس کی ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ابھی کوشش کرتے ہیں کچھ کام کرنے کی، لیکن اس صورت کے اوپر جتنا بھی وقت لگایا جائے وہ کم ہے، کیونکہ سب سے بڑی اس کی جو واضح وجہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک آخری اینڈ ٹائمز کے اندر رہ رہے ہیں. اور اسے سمجھنے کی مثال ایسے لیں جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی تقریب، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے اوریٹرز، بیان کرنے والے، بات کرنے والے، اسپیچز دینے والے آتے ہیں. اور جیسے کوئی کانوکیشن ہوتی ہے کسی یونیورسٹی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اینڈ پھر فائنلی ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں ہم چیف گیسٹ کہتے ہیں. تو وہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی اسپیچ ہوتی ہے. فائنلی وہ جب چیف گیسٹ اسپیچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ تقریب، وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ پیک اپ شروع ہو جاتا ہے. کرسیاں ورسیاں سب سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یو نو ٹریپ ٹینٹس وغیرہ ریپ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا، انا وسعت کہاتین، انہوں نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا صحابہ کو کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی. تو اس صورت کے حوالے سے یہ فرمایا خاص طور سے کہ کیونکہ ہم اس بات کو، یہ چیف گیسٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آنا تھا سب سے بڑی علامت قیامت کی، وہ انہیں آئے ہوئے 1450 سال کے قریب آلریڈی ہو چکے ہیں. اینڈ دا کویشچن اونلی از کہ ہاؤ فار ڈز اٹ گو، اور کتنا وقت ہے. تو بظاہر سیمنگلی ایسا لاجیکلی سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے. تو یہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے کہ دجال کا جب فتنہ ہوگا، جو آخر الزمان، علم آخر الزمان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اسلامک اسکٹالوجی جسے کہا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے، اس کو انگلش میں دا اینڈ ٹائمز کہہ سکتے ہیں، یا اسکٹالوجی، یا علم آخر الزمان عربی زبان میں کہتے ہیں. اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے احادیث وغیرہ میں، تو یہ دجال کا آخری زمانہ ہوگا، اور پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا واپس نازل ہونا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں گزرا تھا کس طرح سے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ایک معین مدت تک کے لیے، اور پھر وہ انہوں نے واپس اینڈ ٹائمز میں بھیجیں گے. تو اس حوالے سے اس صورت کو خاص طور سے اہمیت اس طرح سے ہے، جو ان کی اس کی فضیلتوں میں بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بہت ساری احادیث کے علاوہ اگر غور کریں، خاص طور سے ایک مسند احمد اور مسلم شریف اور نسائی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اسی لیے ان متواتر حدیث اسی کو کہتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتی ہے، احمد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، سینکڑوں کتابوں میں حدیث موجود ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت. اور جو بہت علماء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے دو جمعوں اور درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا، وہ نور اسے دجال کے فتنے سے پروٹیکٹ کرے گا. ये नूर कैसे होगा, ये एक अल्लाह की हिकमत है और इसे अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब दज्जाल जब आएगा तो उसके माथे पे, उसके फोरहेड पे काफारा कफारा ये लफ्ज़ लिखा होगा, तो मोमिन उसे देखते ही पहचान जाएगा कि ये दज्जाल है। क्योंकि काफिर, काफिर का मतलब है झुटलाने वाला, कुफर करने वाला, और ये इसके माथे पे अगर लिखा हुआ है तो मोमिन उसे पहचान जाएगा। लेकिन इसमें फिर भी सवाल होगा कि बहुत सारे मोमिन ब्लाइंड हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, उन्हें कैसे, वो कैसे पढ़ेंगे इस कफारा को। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसीलिए कुरान पाक में एक जगह आता है ना, इन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लतीफ़ सुदूर, कि ये आँख नहीं देखती, असल में तो सीने के अंदर वो दिल होता है जो देखता है। तो वो दिल का जो नूर होता है वो उस नज़र से देखेगा, वो जो अंधा भी होगा वो पहचान जाएगा ये एक दज्जाली फितना है, और इसके इससे बचने की तदाबीर या कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करेगा। तो वो नूर जो होगा अल्लाह की तरफ से हर जुम्मों के दरमियान, वो उसके प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये सूरह काफ की तिलावत जो होगी वो एक नूर होगा, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो कोई भी मोमिन जो होगा उसके सराउंड एक हिसार बना लिया जाएगा इस सूरह काफ की बरकत से, और वो इस फितने से अमन में रह सकेगा इंशाअल्लाह ताला, जो भी इसे हर जुम्मे को इस सूरत की तिलावत करेगा। ख़ास तौर से इसकी पहली और आखिरी 10 आयत की तो तिलावत वी शुड मेक इट अ मस्ट, स्पेशली इन आर टाइम्स। ये उन 5 सूरतों में से है जिनकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला आला अब्दिल किताब वलम यजअल्लहु इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बुलंद पाक है वो ज़ात जिसने नाजिल किया अपने इस बंदे पर। ये यहाँ पे गौर करने, इसके अंदर इतने इल्मी नुक्ते सूरत के अंदर होंगे लेकिन सब में जाना ज़ाहिर है पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, आला अब्दी कि अपने बंदे पर, और आखिर में बिल्कुल जहाँ पे सूरत एंड होगी वहाँ पे भी, ना ना मा अना बशरु मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का ही बशर हूँ। जैसे लास्ट सूरत की इब्तिदा अगर हम देखते हैं, हमने बात की थी बिल्कुल फर्स्ट आयत में सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू इला आखिरिल आयत। वहाँ पे भी हमने देखा था ये दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकीदे हमें इससे समझ आए। वहाँ पे हमें ये समझ आया कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं, और इसका इनकार करना कुरान के माने के ख़िलाफ़ जाता है। और लेकिन जो इस हद तक बिलीव करेगा, इसमें एतदाल बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, कि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कब्र हयात में अपनी कब्र मुबारक में जिसमें अतहर के साथ हयात हैं, लेकिन वो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। वो अल्लाह के हुक्म से हयात हैं, और तमाम अंबिया हयात हैं, वो अल्लाह के हुक्म से हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं है। और अल्लाह की हुक्मरानी ज़ाहिर है, सुप्रियॉरिटी है, उसको अपनी जगह रखने के लिए बिल्कुल। नेक्स्ट इस सूरत में क्या देख रहे हैं कि अला अब्दी ही बता दिए ये मेरा बंदा है, वहाँ पे भी अब्दी ही का ही लफ्ज़ आया था कि बंदे को हम लेके गए, ये बंदे को हमने मौजज़ा अपनी तरफ से करवाया, लेकिन था ये हमारा बंदा, इसे हर जगह हाजिर और नाजिर या गैब का इल्म रखने वाला ना मानो। और यहाँ पे इसको वाजे करने के बाद कि इस पे किताब उतारी वलम यजल्लाहु इवजा, इसमें कोई क्रुकेडनेस नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है किसी किस्म का, और बिल्कुल बज़ाहिर इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनज़ल्ला अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्ली शै, इस कुरान में हर चीज़ का आंसर है। और इन इन सूरतों को ख़ास तौर से जो क्रक्स सेंटर में हम जब कुरान के चलते हैं इसके हार्ट में, तो हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हम अगर आंखें खोलें तो बज़ाहिर हमारे सामने इन सूरतों के बिल्कुल वाज़े हालात नाज़िर होना शुरू हो जाते हैं। गोया सपोजिटली शायद अल्लाह सुबहाना तआला हमें आज के ज़माने का जो तिबयान अली कुल्ली शाही फरमाया था कि हर चीज़ का आंसर है, वो आज के ज़माने इस एंड टाइम्स का समझाना है जो इन सूरतों में हमें मिल रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह की इब्तिदा, वैसे खैर बात ये हो रही थी कि और भी 4 सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह की इब्तिदा से ही इब्तिदा होती है, सूरह फातिहा में, सूरह अनआम में, सूरह सबा में, सूरह फातिर वगैरह में। फिर नेक्स्ट एक चीज़ हम अगर इसमें गौर करें तो इसमें एक ईमान और जो मादियत, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का दौर है, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस इंट्रेंसिक वैल्यू, या जो अकल को समझ आता है और जो आँख को दिखाई देता है सिर्फ बज़ाहिर ये, और इसकी एक बिल्कुल जैसे वाज़े तौर पे एक जंग नज़र आती है। एक तरफ एक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जैसे अंधा भी कफ़रा पढ़ लेगा दज्जाल के ऊपर माथे पे, तो वो कैसे पढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का इससे ताल्लुक़ है कि उसका दिल, वो नूर होगा उसके दिल में जिससे वो देखेगा, आँख तो नहीं देखेगी बज़ाहिर लेकिन वो नूर देख लेगा। तो यहाँ पे भी इसकी और वो एक तरफ, दूसरी आइडियोलॉजी है कि नहीं, जो दिमाग में, जो अकल में समझ आएगा सिर्फ वही सही होगा, जो हमारी अकल में सही नहीं होगा हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और इसीलिए इसमें इन सूरतों में ख़ास तौर से, इन फितनों का ख़ास तौर से एक ताल्लुक़ है, और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं इनका बड़ा कोई एक सिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजन नज़र आते हैं, जो इनमें इसमें वाकई वाज़ तौर पर बयान करने की कोशिश हो रही है। बाकी अगर इसको गौर करें, इसमें इस सूरत में तीन की पॉइंट्स, तीन किस्सों की शक्ल में और तीन फिर मिसालें हमें समझ में आती हैं सूरत में अल्लाह ने दी हमें। पहला किस्सा अगर गौर करें तो अस्हाबे काफ का ही किस्सा है कि ये एक उस ज़माने में किंग होता था, दकियानूस के नाम से इसका किताबों में नाम लिखा है, कि एक बादशाह था जो बुत परस्त था, पैगन था, और लोगों को मजबूर करता था शिर्क करने पे, इन बुतों की पूजा करने पे। ईसा अलैहिस्सलाम के रफली यही जो किताबों में लिखा है 300 के करीब, 300 साल के बाद के करीब, सम वॉट अराउंड दैट एरिया का वाक़या है जो इस बादशाह का जिक्र है। बहरहाल मोर और लेस इन जो कुछ नौजवान थे इनकी कौम में जो सही अल्लाह वाले और सही दीन हक पर, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, तो वो इसके दीन का को रिजेक्ट करते थे, जिन्हें ये बहुत सारा मटेरियल एक बेनिफिट देने की लालच देता था, उन्हें माल पैसा दौलत जो भी उस ज़माने में इन्हें बेनिफिट देता था, फिर अगर ये नहीं क्योंकि मानते थे तो इन्हें डराता था, धमकाता था, और यहाँ तक कि इन्हें कत्ल कर देने की इसने धमकी दी। बाज़ एक रिवायत में शायद कहीं भी मिलता है कि इन्हें बंद कर दिया जेल में, लेकिन बाहर इन्हें धमकी दी, और ये अपने ईमान बचाने के लिए कि या तो अपनी जान बचाएं और शिर्क करें और या अपना ईमान बचाएं, तो इन्होंने कहा मरने से बेहतर यही है कि हम एक कोशिश करते हैं, और ये गार एक तरफ निकल पड़े उस इलाके से कहीं, वहाँ से चलते चलते ये रफली एक बहुत दूर किसी शहर से, एक पहाड़ का कोई गार था, एक माउंटेन के ऊपर एक केव था, उसमें जाके ये लोग इन्होंने पनाह ली और ये वहाँ रुक गए। और यहाँ वो ऐसे ही जैसे कुछ सुस्ताने के लिए या जस्ट फ्रेश अप ऐसे ही लेटे जब ये लोग, तो अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दी, और यहाँ तक के 309 साल तक ये लोग सोते रहे। फिर उसके बाद जब ये नींद से बेदार हुए और इन्हें पता चला कि क्या है, तो इन्होंने एक सिक्का दिया अपने एक साथी को कि तुम वहाँ जाना और वहाँ से कुछ बाज़ार से खाने पीने का सामान लेके आओ या जो भी था। लेकिन इनको, इन्हें तो मालूम नहीं था, हम तो 309 साल तक सोते रहे, यहाँ तक कि इनके साथ जो कुत्ता था, किलाब हुआ, आगे लफ्ज़ भी आएंगे है, तो मैं तो ये इनका कुत्ता भी इनके साथ सोता रहा 309 साल तक। और फिर ये एक बंदा इनका एक साथी कुछ खाने के लिए लेने गया, तो वहाँ पे उस ज़माने में अब 300 साल से ऊपर गुजर चुके थे, तो वो हुकूमत उस ज़ालिम बादशाह की ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ सही अहले हक अहले ईमान लोग दोबारा रूल करना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने इन्हें पहचान लिया जब ये इनके पास पुराना सिक्का था, और वो एक लंबी स्टोरी रिवायात में आती है। और बहरहाल उन्होंने इन नौजवानों को एक अपना कौमी हीरो बना दिया, इनके पीछे चल निकले, और कि भाई इन्हें वहाँ पे आ गया अगला तख मस्जिद है, यहाँ पे हम कोई जैन की जगह, यहाँ कोई मस्जिद बनाएंगे या कोई ऐसे मंदिर बनाएंगे, कोई मज़ार टाइप, कोई सॉर्ट ऑफ ऐसा है कोई इमारत बनाएंगे कि इनको एक सॉर्ट ऑफ पूजा करने के लिए हम इन्हें ख़ास, क्योंकि इस तरह का ये लोग ईमान रखना शुरू हो गए थे, जैसे आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कोई सूफीज़ और कोई वो सलासिल या कोई इस मेंटोर और प्रोडजी रिलेशनशिप के अंदर अपने कायद को अंबिया से भी बड़े मकाम पर पहुंचाता है, तो वहाँ पे शिर्क शुरू हो जाता है। और यही वो शिर्क और नॉन शिर्क की, जैसे इन शिर्क अल ज़ुल्मुल अज़ीम, तो ये जो शख्सियत परस्ती का शिर्क है, इससे जगह जगह अल्लाह ने ख़ास तौर से मना फरमाया। और यहाँ पे भी इन आयतों का मतलब यही समझ में आता है कि ख़ास तौर से इन्हें अल्लाह ने इस शख्सियत परस्ती के शिर्क को रोकने के लिए कि लोग तो इन्हें अपना घर बार छोड़ने और ये इतना हक दीन हक पर कायम रहने के ऊपर अपना हीरो बनाने के चक्कर में थे, तो अल्लाह ने उस घर को बंद कर दिया। और वहाँ पे आता है कि अब वो बेसिकली किसी को मालूम नहीं है कि वेयर दिस केव एग्जिस्ट्स, बगैर कुछ जो रिवायात से पता चलता है तो समवेयर इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया या पता नहीं टर्की के किसी इलाके में या इन इलाकों में से कोई वो पहाड़ी थी जो एग्जिस्ट करती थी। बहरहाल लेकिन ये किसी को पता ही नहीं, अल्लाह ने उस निशानी को ख़त्म कर दिया। जिस तरह से अल्लाह सुबहाना तआला ने ज़्यादातर सहाबा और अम्बिया के भी जो मज़ार थे या कब्रें थी उन्हें वाज तौर पर लोगों के सामने से हटा दिया, आँखों के सामने से। इस किस्से से हमें सबक यह हासिल होता है कि मोमिन को ईमान के सिलसिले में बड़ा हसास होना चाहिए। ऐसे अपने ईमान को सस्ता कौड़ियों के दाम, जैसे एक हदीस में आता है कि यूशको याति अलन्नासी ज़मानुन, वो आगे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, इज़्ज़त तक़ज़ल फ़ई दुबला वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा व तुअल्लिमा लिग़ैर दीन। ये यहाँ पे बात होती है कि लोग माल पैसा खाएंगे लोगों का, और उलमा भी जो होंगे वो तुअल्लिमा लिग़ैर दीन, ये खोटे सिक्कों के बदले, पैसों के बदले अपने दीन को बेचना शुरू हो जाएंगे। तो इस किस्से से ये सबक मिलता है कि ईमान मोमिन का बहुत पुख्ता होना चाहिए, और उसमें अगर कोई मुश्किल भी आती है तो सब्र और शुक्र के साथ उसका उसको फेस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट किस्सा सेकंड नंबर पे हम देखते हैं तो मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का आता है। उनका वाक्य ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक किसी जगह पे उन्होंने कोई तकरीर की और लोगों ने बड़ी वाह वाह जैसे की, एक रिवायत में आता है, तो उनको उन्हें थोड़ा सा उसमें से ज़रा सा प्राइड फील हुई कि शायद मैंने अल्लाह की बड़ी वहदानियत का बयान किया है। तो लेकिन अल्लाह को ये बात उन्हें समझानी थी कि अल्लाह की वैदानियत का हक तो कोई अदा कर ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आयत सेकंड लास्ट आयत में इसमें आएगा, लव कान अल बहरु मिदाद अल कलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु कबला अन तनफद कलिमात रब्बी वलव जिना बिमिस्ली मददा, कि कोई भी अगर चाहे भी तो वो अल्लाह की वैदानियत का हक अदा कर ही नहीं सकता उसके। तो इसलिए अल्लाह ने इन्हें बात समझानी थी और इन्हें बताया कि फ़ला जगह पर एक शख्स है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है, और वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास उन्हें भेजा। और फिर वो इसमें मछली का वाक़या जो डिटेल में आता है कि उनकी एक का होता हुआ डब्बे से उनकी एक जगह पे उछल के समुंदर में चली गई, वो गुलाम को याद नहीं रहा। बहरहाल वो उनकी वहाँ से मुलाकात हुई और उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहते थे जिस इल्म की बात अल्लाह सुबहाना तआला उन्हें सब समझाना चाहते थे। तो यहाँ पे उन्होंने बहरहाल इन्हें कहा कि तो आप मेरी बात नहीं समझ सकेंगे, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ये तशरीही इल्म रखते थे, जबकि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे ये एक अल्लाह की तरफ से मामूर एक तकवीनी निज़ाम को पे मामूर थे। जैसे इसीलिए इन्होंने कहा काला इन्ना कलन तस्तुया मैया सब्र, आपको सब्र ही नहीं होगा, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एक बज़ाहिर जो तशरी इल्म होता है वो सामने वाले को अकल को लॉजिक को समझ आता है, जो शरीयत का जो निज़ाम होता है वो कानून पे फिक्र पे चलता है, और मूसा अलैहिस्सलाम इसके नबी इस मकसद के लिए बनाने गए थे, निज़ाम को कायम करने के लिए, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम जो बैक हेड के ऊपर जो बिहाइंड द सीन्स अल्लाह का निज़ाम चल रहा होता है वो उसके करने के ऊपर मामूर थे। तो खैर एनी हाउ इनके इनका पहला वाक़या में हज़रत के खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती एक पे इन्होंने ट्रैवल किया तो उसे फाड़ दिया या उसमें होल कर दिया, और इन्होंने उस पर एतराज़ किया कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर आगे गए तो दूसरे में इन्होंने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर तीसरा वाक्य में एक जगह पे गए, वहाँ इन लोगों ने इन्हें खाना तक नहीं दिया, और फिर वापस जाने लगे तो एक जगह पे खड़े होकर इन्होंने किसी जगह पे एक दो मासूम बच्चों या तीन बच्चों की कोई प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर दीवार एक खड़ी कर दी खुद ही से। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझ नहीं आई बातें, आप इस बच्चे को कैसे कत्ल कर रहे हैं और लोग हमें पूछ खाना तक नहीं पूछ रहे और आप इन्हें इनके लिए दीवार बना रहे हैं। तो बहरहाल इन्हें ये बात समझ नहीं आई। तो फाइनली जब ये तीसरा वाक़या हुआ तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अब हमारा आगे चलना पॉसिबल नहीं है। मैं खौला अलम अकुल्ला का इन्ना कलन तस्तुया मैया सब्र, आयत नंबर 75 में इनसे इन्होंने ये फरमाया कि आपको मैंने पहले ही कहा था आप मेरी बात समझ ही नहीं सकेंगे। खैर एनी हाउ तो फिर इस यहाँ से ये फाइनली अलग हुए, और अलग होने से पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन्हें तीनों आंसर दे दिए जिन तीन वाक़यात पर इन्होंने क्वेश्चन किया था। कि किश्ती को होल बनाने का मकसद ये था कि आगे एक ज़ालिम बादशाह था जो लोगों की जो बोट्स थी उन्हें कॉन्फिस्केट कर रहा था, उन्हें कब्ज़ा कर रहा था, तो उसमें होल करने से ये था कि जो बोट भी ब्रोकन होती या उसमें कोई फॉल्ट होता कोई फ्लॉ होता तो वो उस बोट को जाने देता, और जो सही सलामत बिल्कुल बोट होती उसे कब्ज़ा कर लेता था। इस वजह से उन्होंने होल कर दिया कि इन गरीबों की बोट उस जालिम बादशाह से बच जाए। बच्चे को जिसको कत्ल किया था उसके बारे में कि ये आता है कि वो बड़ा होकर ये बताया कि वो वालदेन के लिए बड़ा फितना बन सकता था और बड़ा नुकसानदेह हो सकता था, कुफर में मुब्तला होने का उनका उसका ख़तरा था। इस वजह से अल्लाह ने के हुक्म से उन्होंने इसे कत्ल कर दिया ताकि अल्लाह इसकी जगह उन्हें कोई नेक साले औलाद अता फरमाए। और दीवार की तामीर उन्होंने सिले की कि वो यतीम बच्चे जो थे उनकी वालदेन काना अबू हुमा सालिहा, जैसे यहाँ पर आता है, तो काना अबू हुमा सालिहा का मतलब ये है कि इनके माँ बाप जो थे वो बहुत नेक लोग थे, और इस वजह से अल्लाह ने इनके उन माँ बाप की नेकी की वजह से इनका ख़जाना जो छुपा हुआ था उस प्रॉपर्टी में, वो कहीं कोई दूसरा आके उसे ले ना जाए, उसके ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी कि जब वो बड़े होंगे तो अल्लाह अपने कुदरत से उन्हें वो वापस अता कर देंगे। तो इन तीनों का जवाब देने के बाद ये दोनों हज़रत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अलग हो गए। और इस वाक़े से अगर हम गौर करें तो हमें सबक ये मिलता है कि हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस के ऊपर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कोई जवानी में बचपन में कोई मर जाता है, या कोई हादसा कोई शिकार हो जाता है, किसी के ऊपर इमारत कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गिर जाती है, या किसी का कारोबार बिजनेस चलते चलते ठप हो जाता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो एकदम सदमा या हादसाती तौर पे नज़र आती हैं, तो उसको हम उसी एंगल से देखते हैं कि ये नुकसानदेह हैं, जबकि अल्लाह ने कहा आसान तुक्रियो शहीन व खैरुल्लकुम, कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझ रहे हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। तो ये एंगल हमें नज़र नहीं आता उस वक्त बज़ाहिर, जो उनकी नज़र से तशरीही इल्म था इस वजह से नज़र नहीं आया, और उनके तकवीनी इल्म होने की वजह से उन्होंने ये देख लिया। फिर इसके में बेसिक एक की फैक्टर जो समझ आता है वो यही कि एक जो मटेरियलिस्टिक जो इंट्रिंसिक वर्ल्ड है वो एक डिफरेंट एंगल से ज़ाहिर देखती है, और जो वो मटेरियल लोग हैं वो कहते हैं हमें सब पता है, हमें हर चीज़ की खबर है, लेकिन असल में ख़बर अल्लाह ताला को ही होती है, और वो सारी अपनी उनकी हिकमत धरी की धरी रह जाती है जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई वक्त बुरा हो। थर्ड वाक़िया इसमें ज़ुल्करनैन का आता है, और ये इंशाल्लाह इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिटिल डिटेल, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ सूरह काफ विच एग्जैक्टली लिंक्स बैक टू सूरह बनी इसराइल, जहाँ पे शुरू में हमने बिल्कुल ये बात की थी सूरह बनी इसराइल की, कि जिस तरह से जब ज्यूस को निकाला गया बैतुल मुकद्दस से, और फाइनली इनको कहीं ना क्रिश्चियंस तो इन्हें पकड़ पकड़ के मारते थे ज़माने में, तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में कॉकेसस के इलाके में वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो इस पर बात इस हवाले से, क्योंकि ज़ुल्करनैन की डिटेल उससे का लिंक होती है, तो हम एंड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम उन तीन मिसालों की बात करते हैं जिन्हें बज़ाहिर इस सूरह काफ में हम देखते हैं कि यहाँ पे बयान कर हमें इस सूरत में जो हमें मिलती है, उसमें पहली मिसाल एक किस्से की सूरत में मिलती है। वो किस्सा कुछ इस तरह है कि आयत नंबर वर्स नंबर इसके 32 से ऑनवर्ड्स अगर हम गौर करते हैं, वज़रब लम्मा सल रजुलैनी जालना लि अहदिमा जन्नतैनी मिन अनाब व हफफनावा बि नखलिन व जालना बैनहुमा ज़रअ, इनको अल्लाह ने दो आदमियों की मिसाल मसल रजुलैन के, उनमें से एक दो आदमियों में से, ये एक रिवायत में जलालैन वगैरह में लिखा हुआ है कि ये दोनों भाई थे, और शायद गालबन इस तरह का कुछ वाक़या उन्होंने लिखा है कि इनकी जब जायदाद तकसीम हुई तो एक ने सदका कर दिया और एक ने अपने बिजनेस बना लिए, या बहरहाल वल्लाह आलम ये दो आदमियों की मिसाल जो यहाँ पे मिलती है, हुएवर दे वर, लेकिन कुरान की आयतें हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे दो आदमी ज़रूर थे जिनकी ये स्टोरी यहाँ पे अल्लाह ने मेंशन की, लेकिन किसी ख़ास वजह से की, ये इससे मैटर नहीं करता है कौन थे। ये एक बंदे को अल्लाह ने बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आया कि जन्नतैन में नाब हफफनामा बिन नखलम, उसे बागात और बहुत सारी ग्रीनरी फार्म्स और बड़े बड़े खेत वगैरह उसका मालिक बनाया एक शख्स को, और दूसरा जो था उसके पास इतना माल वगैरह नहीं था। तो उस इस शख्स के पास वो दूसरा ये दोस्त थे, या बस जैसे कि उस रिवायत से जलालैन में जैसे पता चलता है भाई थे, तो आपस में मिलते होंगे, तो دوسرا بھائی جو تھا فقال صاحب ہوا وہ یحاورنا اکثر من کمالا و اعز نفرا، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، غریب اس دوسرے شخص سے کہا، اگر وہ بھائی نہیں بھی تھا، کہ مجھے تو اللہ نے دیکھو کتنا مال یہ سب کچھ دیا، اعز نفرا میرے پاس، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اعز نفرا، اس کے پر نفری سے مراد اس کی اولاد غالباً تھی، کہ اس کے بعد اولاد وغیرہ بھی بہت تھی، اور اسی پر یہ فخر اور غرور کرتا تھا بہت زیادہ، اور یہ یہاں تک یہ بھی سمجھتا تھا کہ میری ان چیزوں کو کبھی کوئی زوال ہی نہیں آئے گا، اور یہ سٹوری کے اندر بہت زیادہ ایک عبرت لینے کی بات ہے، جیسے آگے چلتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ، یہ اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا، ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ غالباً مسلمان تھا، کیونکہ آگے چل کے شرک کی بات خود کرے گا، لیکن یہاں پہ اپنے مال دولت بچے اولاد یا جن چیزوں پہ بھی یہ فخر کرتا تھا اور اپنے نفس پر اللہ نے کہا ظلم کرتا تھا، قال ما اظن ان تبید ھذی ابدا، کہ میرے پاس یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ یہ سمجھتا تھا، وما اظن الساعۃ قائمۃ ولا ارددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ قیامت ویامت بھی، اور یہ جو تم بات کرتے ہو یہ دوسرے بھائی کو اپنے غریب بندے کو کہتا تھا، میرا یہ خیال ہے ایسے ہی ہے یہ سب، پتہ نہیں تم لوگوں نے خود ہی بنا لیا، یا جو بھی غالباً ایک کچے عقیدے کا مسلمان شاید پرابیبلی تھا، جو یہ کہتا تھا میں بس یہ قیامت ویامت جو بھی ہے، والا اردتو اگر میں آخرت میں بھی، اگر کچھ فرض تم کہتے ہو کہ بھائی ایسا ہے، تو میں وہاں پہ بھی جب لوٹایا جاؤں گا الا ربی، جب اپنے رب کے بعد، لاجدن خیرم منہا منقلبا، کہ مجھے تو وہاں پہ بھی یقیناً ڈیفینیٹلی اس سے بھی زیادہ ملے گا جو جتنا میرے پاس دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھ سے خوش ہے راضی ہے، اور میں اسی وجہ سے آخرت میں بھی مجھے ملے گا، یہ اس کو اس چیز کے اوپر بیس کرتا تھا، اس سے اس دوسرے آدمی نے کہا کہ کفرتا باللذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا، ایک نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں ایک آدمی بنایا، لیکن والا ربی ولا شریک بربی احدا، لیکن تم جو تم ڈھیٹ آدمی ہو اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہیں کر رہے، بھلو لا اذا اس دخل تھا جنت کا کل تماشا اللہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ، کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم جب یہاں پہ انٹر ہوتے تو تم کلتا تم یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ، تو یعنی بجائے ان نعمتوں کا شکر میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کے تم اس پہ گھمنڈ کر رہے ہو، اور فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ورسل علی عصفان من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اور یہی ہوا کہ ایک طوفان آیا اور اللہ کا عذاب کی شکل میں یہ سب اس کے جو باغات تھے یہ جل کر کوئلہ ہو گئے اور تباہی اور بربادی کچھ میں کچھ بھی نہیں بچا، اور یہاں تک کہ وہ خیتا بھی سماری، اس کا سب جو اس کے پھل وغیرہ فروٹ سے سب تباہ ہو گئے، فاسبہ یو قلب کفئی، اپنی وہ ہتیلیاں ملتا رہ گیا، یہاں پہ اسبا یو قلب کفئی، کفئی ہاتھ کی جمع ہے، دونوں ہاتھوں کو کفئی کہتے ہیں، کہ اپنے وہ ہتیلیاں آپس میں مچلتا رہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، الان فقم مایا خاویت علا روشی اویا کولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ آیت نمبر 42 کے اوپر جا کے اس نے فائنلی جب کہا اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، اب اگر اس پوری سٹوری میں ہم غور کریں تو اس نے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات نہیں کی تھی اس پوری سٹوری کے اندر، یہ تو ایک امیر آدمی تھا، مال دولت کے گھمنڈ پہ خالی اتراتا تھا، اینڈ ہی واز پراؤڈ اباؤٹ اٹ، کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیونکہ مجھے اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا، صرف یہی کہتا تھا وہ، جو آج کل نارملی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں نعمتیں ہیں تو اس کو ہم عزوم ایسے کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے اور خوش ہے اور اس وجہ سے ہمیں آخرت میں بھی اللہ اتنا ہی دے گا، جو کہ بالکل ایبسولیٹ رانگ ہے، اور اس بات کو یہاں سے اس بندے نے جب اینڈ میں اس کا مال تباہ ہوا تو اس نے کہا لم اشرک، یہاں پہ لفظ شرک کا اس نے استعمال کیا، حالانکہ اس سے مراد وہ شرک نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ اس نے کسی بندے کو شریک کیا تھا، یہ اس کو اسے شرف علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شرک خفی تھا، اس سے یہ مشرک تو نہیں ہو گیا تھا، کافر تو نہیں ہو گیا تھا، بہرحال مسلمان تھا، تو اینڈ میں ایک دن انشاءاللہ جو بھی مسلمان ہوگا اس نے جنت میں جانا ہی ہے، لیکن بہرحال اس کی تعبیر یہاں پہ قرآن نے بہت ہی خطرناک الفاظ میں کی، پھر آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں اس مسئلے کو سمجھنے میں خالی ایک نصیحت یہ ہے کہ جو توکل جو ہوتی ہے یعنی کہ جو اسباب کو اختیار کرنا ہے یا ایمان اور توکل، یہ اس کے منافی نہیں ہوتا، کسی بھی سبب کو کوئی بندہ اگر اختیار کر لیتا ہے، ये बात इसमें समझने की ज़रूरी है। कोई भी किसी के पास अगर मटेरियल बेनिफिट्स हैं तो वो उसकी दलील नहीं है कि ये इस वजह से चोज़न वन है या पसंदीदा है या चुना हुआ बंदा है। लेकिन हाँ, ये भी इसके साथ ज़रूरी लाजिम नहीं आता कि किसी के पास अगर ये असबाब हैं तो वो चुना हुआ बंदा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। बात असल में सिर्फ सोच की है कि उसने घमंड किया था, उसने कहा था कि मैं इसमें आजू नफ़र आ, अपने चीज़ों पे घमंड करता था, अपनी एसेट्स पे। तो घमंड की वजह से उसने यहाँ पे शिर्क से तावील हुआ है। लेकिन वैसे अगर कोई बंदा, किसी के पास मौत अल्लाह ने उसे नवाजा है, उसके पास माल दौलत है, शशरत, उसके पास हर चीज़ हो, हर फैसिलिटी हो दुनिया की, लेकिन वो उसे मौसर भी ज़ात नहीं समझता हो और अब उसका ईमान पुख्ता हो अल्लाह पे कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, तो अल्लाह ने खुद कहा इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं उसे और बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे शिर्क से समझ बहुत ज़्यादा वाज तौर पे ये बात आती है कि इस बहरहाल ये माल का या ये जो औलाद का और ये घमंड भी होता है, ये नाऊज़ु बिल्लाह, ये भी अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म है। इसी वजह से इतने इसके वाक़े को डिटेल के अंदर अल्लाह ने बयान किया। फिर दूसरी मिसाल जो हमने देखी, वो अल्लाह ताला ने वो बयान ये बयान की कि और इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदगी की मिसाल बयान कर दो कि मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया और ज़मीन। या आखिर आयत नंबर 45 से अगर हम देखें, वज़रिब लम मसल हयात दुनिया का माई अनजल ना मिन समाई फ़क्त अल तबी नबात हशीमन तजरूर रिया कान कुल्ली शई मुक्तदरा, के इनके ये जो दुनिया ज़िंदगी की मिसाल है इसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे आसमान से कोई पानी बरसता है और बारिश होती है एंड देन वो उसमें खेती उगती है और सब कुछ यानी बेनिफिशियल होता है। और फिर हम देखते हैं कि सब अगर उसको उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसकी के उसे काट कर खा लिया तो ठीक है, जो भी फसल है, कोई दरख्त है, उसके फ्रूट्स खा लिए तो ठीक है, वरना वो उसी तरह गिर के चूरा चूर हो जाते हैं। या फिर एक कोई हवा उड़ा के उनको ले जाएगी, एक हवा चलेगी और वो एक फ्रूट उस दरख्त से गिर के कहीं दूर जाके गिरेगा और उसका अंजाम एंड में अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि मॉर्टल ही होता है, कुछ भी इमॉर्टल नहीं होता इस कायनात में। जो भी शय है सुबहाना अल्लाह सुबहाना व ताला के अलावा उसी के कंट्रोल में हर चीज़ है। और इस फिर आगे ये जो ये अल्लाह ने जो खुशनुमा ये समझे कि जो सारी ग्रीनरी और इस सूरत में अल्लाह में ये मिसालें बयान करता है, इसके बाद आगे फरमाता है आयत नंबर 46 में, अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सवालिहात खैरुन इंदका रब्बिका सवाबा खैरुन अमला, के ये जो माल है और औलाद है ये सिर्फ दुनिया की एक जीनत है, ये दुनिया के लिए एक प्राइड है, लेकिन इससे कुछ ये बाकी रहने वाला नहीं होता। जैसे हम आखिरी पारे में देखते हैं यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, के एक आदमी होगा जब क़यामत आएगी वो अपने भाई से भागेगा, वह उम्मी ही वह भी वो अपने माँ बाप को धक्के मारता हुआ भागेगा वहाँ से, वह साहिबत ही वह बनी वो अपने दोस्त को धक्का मारेगा, अपनी औलाद को फेंकेगा और सिर्फ अपनी फ़िक्र में लग जाएगा। तो यहाँ पे भी यही क्या कि माल और औलाद और ये सब कुछ जो होगा ये सिर्फ दुनिया के लिए, तो खुशी आप इसके ऊपर प्राइड अपनी एक आर्टिफिशियल एक खोल चढ़ा के हो रहे हो, लेकिन ये जो बाकी रहने वाला दुनिया में चीज़ होगी वो सिर्फ़ सवालेहात होंगे, नेक अमाल होंगे अल्लाह के नज़दीक, इंदा रब्बे का सवाब हो खैर अमल और अच्छे अमाल होंगे। लेकिन फिर भी जाहिर है जो जाहिल और अहमद और जो स्टूपिड आदमी होता है वो इन नेमतों को समझता, हर एक हदीसे पाक में आता है कि नेमतानी मगबून फ़ी मा कसीर मिन नासी अस्सेहतु वल फिराह, के दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग दुनिया में गफलत में पड़े हुए हैं, एक उसकी सेहत और एक उसके पास जो टाइम होता है, सेहत वल फिराग और फरागत जो होती है, उसके पास अभी फ्री टाइम है, एम्पल टाइम है, उसे वो ज़ाया करता है। जो सेहत है जब वो हेल्दी है उसे वो उल्टे सीधे कामों में ऐशो इशरत में ज़ाया करता है, और जब वो सेहत उसके पास से चली जाती है या दूसरा फराग फारिग टाइम कि जी अब तो इतना बिज़ी हो गया हूँ लाइफ में, अपने आप को खुद चलते 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 इतना मैंने बिज़ी कर लिया है कि अब किसी चीज़ का मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें वो खुद ब खुद ज़ाया कर देता है एक स्टूपिड आदमी, और अल्लाह के दीन जो सही जो हक की आवाज़ है उसे निगलेक्ट करता है। और जो अकलमंद आदमी होता है, जिस जो सेंसिबल आदमी होता है, वो जो इन बातों को समझता है, वो चीज़ वो ये दुनियावी कामों के साथ साथ इस बात को अपने माइंड में रखता है कि ये चीज़ें यकीनन जो भी हैं ये ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन असल जो बाकियात तो सालेहात, ये सदका खैरात, जो ज़िक्र तिलावत, अच्छे अखलाक और तमाम दूसरे लोगों की जो हमदर्दी और इसमें आमाल, अखलाक, माशरत, अखलाकियात, ये सब चीज़ें आती हैं, इन सब के अंदर बैलेंस करता हुआ और साथ में फिर दुनिया में यकीनन रहना है तो उसमें भी चलते हुए उसे बैलेंस करके चलता है। और थर्ड मिसाल जो इसी सूरत में फिर फाइनली हमें मिलती है वो है इस आगे आयत नंबर 50 से शुरू होती है, वैस कुल नाल मलाइकत इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, के तकब्बुर और गुरूर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इबलीस के किस्से के अंदर हमें मिलता है इसकी मिसाल, जब इसने अपने गुरूर और तकब्बुर और अपने घमंड के अंदर अल्लाह के हुक्म के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो वो ये समझ रहा था कि मैं बेहतर हूँ क्योंकि खलकता हूँ मैं नारे व खलकता हूँ मैं तीन, कि उस मैं आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी से बना है, मैं इसके आगे कैसे सजदा कर दूँ। तो ये इसने जब घमंड किया तो उसका नतीजे में अल्लाह ने इसे जन्नत से निकाल दिया। बहरहाल इसके अंदर अगर गौर करें तो एक बंदगी का हमें जो तकाज़ा होता है अल्लाह की, शुरू में सूरत स्टार्ट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला अब्दिही, जो अब्दियत होती है, अब्द कहते हैं बंदे को, और ये बंदा होने का हक जो होता है वो ये है कि कभी भी फ़ख्र और घमंड में मुबतला ना हो, अल्लाह के जो हुक्म है और जो उनके सामने अपनी लॉजिक, अपनी मंतिक गाड़ने के ऊपर ना लगा रहे हर इंसान। और इसीलिए इसमें आगे अगर हम देखें 54th आयत में, तो वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, कि हमने तो ये बिल्कुल इस कुरान के अंदर साफ साफ ये लोगों के लिए जो है हर किस्म की मिसालें बयान की हैं, और ये जो इंसान होता है ये अक्सर झगड़ालू होता है, जदला, ये बस अपनी लॉजिक, अपनी मंतिक लगाता है पहले और बात सुनने से एक अनबायस्ड और अनप्रेजडिस तरीके से सुनने के लिए क्योंकि तैयार नहीं होता, तो इस वजह से वो अब्द के ज़िम्रे से निकल जाता है। और वो अब्दियत का तकाजा क्या था कि वो बिला किसी पर्सनल बेनिफिट और बिला किसी एजाज़, बिला किसी एक्सपेक्टेशन के अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह की अब्दियत करे, जो कि पहली आयत से पता चलता था, लेकिन इंसान ऐसा फिर भी नहीं करता क्योंकि कान अल इंसान व अक्सर शैइन जदला, एक दूसरी जगह आता है खुलिक अल इंसान अजूला, कि ये जल्दबाज भी है, ये जल्दी करता है, फौरन कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाता है, कोई बात सुनी उसके ऊपर फौरन बिला बिला तहकीक, बिल्कुल एक जो कि आजकल की भी हम अगर देखते हैं दुनिया के अंदर एक एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है, उस तरह के कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। असल में सही अकलमंद और कामयाब होने का तकाज़ा ये है कि इंसान हर चीज़ को पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे, तहकीक करे, उसको देखे भाले और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे, बजाय जल्द से जल्द कंक्लूजन पे पहुंचने के। लेकिन क्योंकि अजूला है इंसान, जल्दबाज है, जल्दी करता है और फौरन फ़ैसला करता है, और अक्सर अशीन जदला, और हर बहुत सारी जो ज़्यादातर अक्सर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनमें झगड़ालू है, तो फटाफट अपना कंक्लूजन क्योंकि निकाल लेता है खुद ही से, इस वजह से उसे ये बात अल्लाह की समझ नहीं आती। यहाँ पे इंशाल्लाह आज रुकते हैं क्योंकि जो आगे चल के फिर ज़ुल्क़रनैन का जो फाइनली सेकंड लास्ट रुकू में बात चलती है, और लास्ट रुकू में उसके बाद उससे ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलती है, तो वो इंशाल्लाह वील ट्राई टू कंप्लीट दैट टुमारो। आज के लिए इतना ही। सुबहानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।